लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की विस्तृत व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि केवल धर्मी व्यक्ति ही अन्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति अन्यों को परामर्श देने के योग्य होता है। धर्मी अथवा धर्मपरायण व्यक्ति वह होता है जो खुद पर संयम रखता, अनुशासन में रहता और सबसे महत्वपूर्ण ईश नियमों का पालन करता तथा उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करता है। ऐसे ही व्यक्ति को परामर्श देने के योग्य ठहराया गया है। इसीलिए लेखक कहता है कि धर्मी व्यक्ति ही अन्यों का पथ प्रदर्शन करता है, जबकि दुष्टों का मार्ग लोगों को भटका देता है। दुष्टों के मार्ग पर व्यक्ति अपने संयम, धैर्य और अनुशासन को खो बैठता तथा गलत कामों में लग जाता है। बुरी संगति और बुरे दोस्त बुराई करने के लिए उकसाते हैं, और यदि व्यक्ति कमजोर हो तो उस पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कमजोर व्यक्तियों की ना समझी उन्हें विनाश की ओर ढकेल सकती है। गलत दोस्ती किसी भी व्यक्ति को भटका सकती है। इसी के प्रति 26वें पद में सचेत कराया गया है। 27वें पद में लेखक कहता है, आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ का लेखक इससे पूर्व भी आलस के विरुद्ध चेतावनी दे चुका है। आलसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसमें काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, जो अपना समय व्यर्थ ही गंवा देता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति योजनाएं बनाता है, ख्याली पुलाव पकाता है, किंतु आलस के कारण अपनी किसी योजना को अंजाम नहीं दे पाता। दूसरी ओर परिश्रमी अपने परिश्रम का फल उठाता है। वह अपने परिश्रम से अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन एकत्र करता है। श्रोताओं, परिश्रम किसी भी व्यक्ति की अनमोल संपत्ति होती है। एक पुरुष या महिला के पास कई कीमती चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनमें परिश्रम सूची में सबसे ऊपर होता है। बहुत से बड़े बड़े काम थोड़ी सी प्रतिभा तथापि बड़ी लगन से पूरे किए जा सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम पद में लेखक कहता है, धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। इस स्थल पर हमने श्रोताओं का ध्यान धार्मिकता शब्द की ओर आकर्षित कराया था। धार्मिकता वास्तव में है क्या, जो मनुष्यों को जीवन की ओर ले जाती है? ईश्वरीय या नैतिक कानून के अनुसार कार्य करना ही धार्मिकता है। धार्मिकता का अर्थ है अपराध या पाप से मुक्त रहना। इसका अर्थ है नैतिक रूप से सही या न्यायोचित या न्याय संगत निर्णय लेना। काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर रहना, यही है धार्मिकता। भले ही धार्मिकता का जीवन जीने में मनुष्य को ईश नियमों के अधीन रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए कई लोगों को यह उबाऊ या अप्रिय लग सकती है, विशेषकर उन लोगों को जो सांसारिक माया मोह में पड़े रहते हैं, जो आत्मा से अधिक अपने शरीर की परवाह करते हैं। ऐसे ही लोग शैतान के जाल में आसानी से फंस जाते हैं तथा धार्मिकता को उबाऊ और अप्रिय मानने लगते हैं, जबकि सच्चा आनंद, सच्चा सुख केवल धार्मिकता के जीवन में है। इसी में है जीवन का सुख, इसी में है मनुष्य की मुक्ति। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 13वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 25 पदों वाले सूक्ति ग्रंथ के 13वें अध्याय में लेखक का परामर्श है कि मनुष्य ईश्वर के नियमों के अनुकूल जीवन यापन करे, चतुराई से काम करे, अच्छी समझ रखे तथा अन्यों को सीधे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे, अन्यथा उसे गरीबी और अपमान सहना पड़ेगा। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। समझदार पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुनता है, किंतु उपहास करने वाला डांट डपट की चिंता नहीं करता। मनुष्य अपने शब्दों का अच्छा फल खाता है, किंतु अविश्वासी की प्रवृत्ति हिंसा की ओर है। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। वस्तुतः श्रोताओं, 13वें अध्याय के पहले पद में इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि बच्चों को किस तरह के लोग बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए और माता पिता को उनके सामने कौन सा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इससे पूर्व भी हम कह चुके हैं कि बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित सूक्ति ग्रंथ नीति वचनों की पुस्तक है, जिसमें संक्षिप्त और यादगार बयानों में व्यावहारिक जीवन ज्ञान का एक संग्रह मिलता है। वास्तव में सूक्ति ग्रंथ अपनी संरचना में अद्वितीय है। इसमें अधिकांशतः बिना किसी संदर्भ या विषय संगठन के व्यक्तिगत बयानों द्वारा जीवन यापन के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। यह ग्रंथ धर्मशास्त्र के अन्य ग्रंथों से बिल्कुल हटकर है, जिसमें ईश्वर और ईश्वर के मुक्ति कार्य के बारे में विचारों से अधिक व्यावहारिक जीवन का ज्ञान दिया गया है। साथ ही सूक्ति ग्रंथ अपने समय के धर्म निरपेक्ष साहित्य के मामले में भी अद्वितीय है। राजा सुलेमान के युग में पड़ोसी राज्यों के पास ज्ञान साहित्य का अपना संग्रह था और कुछ जगहों पर राजा सुलेमान के परामर्शों और इनके लेखन में महत्वपूर्ण समानताएं मिलती हैं। श्रोताओं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर और स्वाधीन आत्मा प्रदान की है, अस्तु वह अपनी इच्छा शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं के पालन अथवा उल्लंघन के लिए स्वतंत्र है। सूक्ति ग्रंथ ईश भक्ति पर बल इसलिए देता है क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति ही वास्तव में धर्म परायण और सद्गुण संपन्न बन सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के 13वें अध्याय के उक्त पदों में भी लेखक स्मरण दिलाता है कि जो पुत्र समझदार होता है वह अपने पिता की, अपने अभिभावक की शिक्षा को सुनता है, किंतु जो पिता की बातों का मजाक उड़ा देता है उसे डांट डपट की चिंता बिल्कुल नहीं रहती है। फिर लेखक का परामर्श है कि व्यक्ति उतना ही बोले जितना जरूरी है, वह व्यर्थ की बातें नहीं करे, क्योंकि वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना जानता है। इसी तरह श्रम के महत्व को उक्त पदों में उजागर किया गया है। यदि मनुष्य परिश्रम करेगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, किंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता और सुखी जीवन की आशा करता रहता है, उसकी आशा व्यर्थ होगी, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। आगे 13वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में लेखक कहता है, धर्मी को झूठ से घृणा है, किंतु दुष्ट कलंकित और अपमानित होता है। धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती है, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। श्रोताओ, धर्मी को झूठ से घृणा है, किंतु दुष्ट कलंकित और अपमानित होता है। पद की व्याख्या यही हो सकती है कि जहां अनुग्रह का राज होता है वहां पाप घृणित है। हर धर्मी व्यक्ति झूठ से नफरत करता है, क्योंकि हर पाप की जड़ झूठ है, और विशेष रूप से व्यापार और बातचीत में धोखाधड़ी। धर्मी व्यक्ति न केवल झूठ से परहेज करता, बल्कि वह झूठ से घृणा भी करता है, क्योंकि वह प्रेम के मूल सिद्धांत में विश्वास करता है और ईश नियमों पर चलकर, ईश्वर पर भरोसा रखकर अपना जीवन यापन करता है। इसके विपरीत दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसे झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, भले ही इसके लिए उसे कलंकित और अपमानित ही क्यों न होना पड़े। छठे पद में लेखक कहता है, धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती है, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। श्रोताओ, हर गलत काम का गलत फल होता है, इसीलिए लेखक कहता है कि पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। जबकि जो व्यक्ति अपना जीवन ईमानदारी से बिताते हैं और अपने अंतःकरण के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उनकी रक्षा होगी। वे अवश्य ही शैतान के प्रलोभनों से बचे रहेंगे और ईश कृपा के पात्र बनेंगे। इसीलिए तो स्तोत्र ग्रंथ के 25वें भजन का रचयिता ईश्वर पर विश्वास की अभिव्यक्ति कर कहता है, मेरी सच्चाई और धर्म निष्ठा मेरी रक्षा करें, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कैथोलिक कलीसिया 3 महादूतों मिखाएल, रफाएल और गैब्रियल का पर्व मनाती है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों का आह्वान किया कि हम अपने आप को महादूतों के संरक्षण में सौंप दें। उन्होंने 29 सितंबर को एक ट्वीट प्रकाशित कर कहा, आइए हम अपने आप को महादूतों मिखाएल, रफाएल और गैब्रियल को सौंप दें, ताकि वे बुराई के बहकावे से लड़ने में हमारी रक्षा करें, सुसमाचार फैलाने में मदद दें तथा जीवन की यात्रा में हाथ पकड़कर आगे ले चलें, जिससे कि हम ईश्वर की मुक्ति योजना में सहभागी हो सकें। जेसुइट रिव्यू ला चिविल्ता कैथोलिका ने कजाकिस्तान में पोप फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा के दौरान रूसी क्षेत्र में येसु समाजियों के साथ उनकी बातचीत को प्रकाशित किया है। वार्तालाप में संत पापा ने जारी संघर्ष, जिसको उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा दी है, उस पर चिंतन किया है। संत पापा ने कजाकिस्तान में अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान 15 सितंबर को नूर सुल्तान स्थित प्रेरित राजदूतावास में 19 येसु समाजियों से मुलाकात की थी, जहां येसु समाजियों से उन्होंने कहा था कि हमें अपने हृदय को घृणा से मुक्त करना चाहिए। संत पापा की प्रेरित यात्रा के दौरान विभिन्न देशों से, जिससे वे रूसी क्षेत्र कहते हैं, येसु समाजी मध्य एशियाई देश में एकत्रित थे। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा, युद्ध में आम लोग दुख सहते हैं, यह घृणा उत्पन्न करता, और जो युद्ध करते वे मानवता भूल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि यह सोचना गलत है कि यह एक चरवाहा फिल्म है जिसमें अच्छे और बुरे लोग हैं। निसंदेह यह एक विश्व युद्ध है। युद्ध को भड़काने में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारकों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा, हमें मूल कारण का पता लगाना होगा जो संघर्ष की ओर ले जाता है। संत पापा ने यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले दिसंबर 2021 में एक राष्ट्र प्रमुख से अपनी मुलाकात की याद की, जिन्होंने कहा था कि वे बहुत चिंतित हैं क्योंकि नाटो रूस के द्वार पर भौंकने गया है। इस बात को बिना समझे कि रूसी साम्राज्यवादी हैं और अपनी सीमा की असुरक्षा से डरते हैं। युद्ध के कारणों के बारे संत पापा ने कहा कि यह साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैं संघर्ष में साम्राज्यवाद देखता हूँ। जब वे भयभीत एवं नष्ट होना महसूस करते तो साम्राज्यवादी यह सोचते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए समाधान है युद्ध शुरू करना, उसी तरह हथियारों को बेचना और उनका परीक्षण करना। संत पापा ने रूसी क्षेत्र के येसु समाजों को संकेत दिया कि इस समय यूक्रेन की यात्रा असंभव है। उन्होंने कहा, शुरू से लेकर कल तक मैंने यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को लेकर लगातार युद्ध के बारे आवाज उठाई है। पोप ने रूसी राजदूतावास में अपने दौरे की भी याद की, जिसको उन्होंने यूक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद किया था और स्वीकार किया कि यह एक पोप के लिए असामान्य बात थी। संत पापा ने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की इच्छा से प्रेरित थे एवं वार्ता के लिए एक छोटा दरवाजा खोलना चाहते थे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बात का जिक्र किया तथा कार्डिनल माइकल चर्नी, कार्डिनल कॉनराड क्रायस्की एवं महाधमदश गलाघर की यूक्रेन यात्रा, साथ ही यूक्रेनियों की प्रतिबद्धता की भी याद की। संत पापा ने कहा, मैं भी यूक्रेन जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं इस खास समय में जाऊं, हालांकि हम बाद में देखेंगे। संत पापा ने कहा, मैंने यूक्रेन पर आक्रमण को अस्वीकार्य, प्रतिकूल, संवेदनहीन, बर्बर और अपौत्र आक्रमण कहा है। साधारण लोग ही युद्ध के असली शिकार होते हैं, जो युद्ध की गलतियों को अपनी त्वचा से चुकाते हैं। पुतिन के दिमाग के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति की बेटी दारिया दुगिना पर हमले के बाद कहे गए शब्दों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा, मैंने उस महिला का भी जिक्र किया था जिसे उड़ा दिया गया। इस स्थिति पर लोग उस बिंदु तक मेरे द्वारा कही गई हर बात को भूल गए और केवल उस संदर्भ पर ध्यान दिया, लेकिन मैं लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझता हूँ क्योंकि वे बहुत पीड़ित हैं। संत पापा ने कहा, पोप गलत समझे जाने पर नाराज नहीं होते क्योंकि मैं इसके पीछे की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूँ। येसु समाज के मिशन के बारे बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं इस बात पर अधिक रुचि नहीं रखता कि आप पोप का बचाव करें, बल्कि लोग आपके द्वारा चिंता किए गए महसूस करें जो पोप के भाई हैं। संत पापा ने पुरोहितों से कहा, हमें जो करना है वह है सामीप्य व्यक्त करना, ताकि लोग महसूस कर सकें कि कलीसिया नजदीक है, क्योंकि ईश्वर का तरीका है सामीप्य। कजाकिस्तान में येसु समाजों के साथ पोप फ्रांसिस की बातचीत 29 सितंबर को ला चिविल्ता कैथोलिका पत्रिका में प्रकाशित हुई। वैटिकन में बुधवार को एक प्रेस सम्मेलन में खेल के आयोजकों ने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय बैठक को शुक्रवार और शनिवार को न्यू सिनड हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाया जाएगा ताकि मानवीय, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास के लिए खेलों के महत्व को रेखांकित किया जा सके। वैटिकन के न्यू सिनड हॉल में 29 से 30 सितंबर को खेल उत्साही, प्रमुख खेलों के प्रतिनिधि, अंतर सरकारी संस्थान, संत पापा फ्रांसिस के आह्वान पर खेल की सामाजिक जिम्मेदारी और खेलों में भाग लेने से मानवीय, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैठक का शीर्षक है सभी के लिए खेल, एकजुट, सुलभ एवं प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप। खेल को वैटिकन के लोकधर्मी, परिवार और जीवन विभाग द्वारा संस्कृति एवं शिक्षा विभाग एवं खेल के लिए संत जॉन पॉल द्वितीय फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है अक्टूबर 2016 में आयोजित पिछली अंतर्राष्ट्रीय बैठक मानवता की सेवा में खेल के साथ शुरू हुई यात्रा को जारी रखना। इसके बाद 2018 में परमधम पीठ के खेल पर पहले दस्तावेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप में देना प्रकाशित किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जो खेल की दुनिया को तीन प्रमुख विशेषताओं को अपनाते हुए भविष्य की ओर देखने का आह्वान करेगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।